اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چلیں تفسیر دیکھتے ہیں.
ذالکم اقسط عند اللہ, یہ بات زیادہ انصاف والی اللہ کے ہاں, اللہ کے نزدیک یہ بات میں انصاف ہے. اس لکھنے کا فائدہ کیا ہے, اس تحریر کی حکمت کیا ہے؟ This is more just. Just. کیونکہ قرض دینے اور لینے والے کے لیے اس میں اگر کوئی بات بھول جاتی ہے, کوئی چیز ہو جاتی ہے, تو انصاف کیا ہوگا کہ اس میں سے جو بھی لکھا ہوا اس میں سے دیکھ لیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بے ایمانی کر رہا ہو اس وجہ سے, ڈس آنےسٹی ہو تو اس وجہ سے کوئی دوسرے کے اوپر ظلم کر لیتا ہے یا کوئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بعض دفعہ واقعی انسان بھول بھی جاتا ہے, تو انصاف کیا ہے لکھا ہوا. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور زیادہ درست کرنے والی ہے شہادت کو, شہادت کی ادائیگی میں زیادہ قائم رکھنے والی ہے شہادت کو, یعنی عدل اور انصاف کے تقاضے اس سے بہتر طور پہ پورے ہوتے ہیں. یہ حکم پورے عدل والا ہے, گواہی کو بھی ثابت رکھنے والا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی بھی کہیں بھول چوک کسی سے بھی ہو رہی ہوگی نا, تو وہ بھی ڈاکومنٹیشن دیکھ کے بھولی ہوئی بات اس کو یاد آ جائے گی, ٹھیک ہے. ورنہ گواہی کو بھی ہو سکتا ہے کہیں بھول جائے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا, جو آگے بات بھی آ رہی ہے, وہ ادنا اللہ تعتابو, اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ اچھا اس نے یہ بات کہی تھی اور سمجھی آپ نے کچھ اور بات, لیکن جب ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر یعنی بالکل کلیئر ہو جاتی بات. تو زیادہ گواہی کو بھی قائم رکھنے والی زیادہ چیز کون سی ہے؟ کتابت. یہ نہیں کہ بس گواہ بنا لیے, کتابت کی کیا ضرورت ہے, بس تم نے دیکھ لیا نا ہم نے یہ کیا. نہیں, محض گواہی پہ بھی آپ صرف اس کو انف نہیں سمجھ سکتے, اور صرف لکھنے کو بھی نہیں انف سمجھ سکتے. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لکھنے پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے, بھی خود ہی لکھ کے انہوں نے گھر میں رکھ لیا ہوگا, اور گواہیاں بھی جو ہے نا وہ کیا پتا کہ کوئی بھول جائے, ٹھیک ہے. تو بس پہلے ڈاکومنٹ لکھا جائے. اب دیکھتے ہیں آپ نیچے وٹنسز کے سگنیچر لکھے ہوتے ہیں, تو پھر وہ وہاں پہ سگنیچر کرتے ہیں, تو اس سے کسی کو بھی نہیں شک ہوگا. دیکھیں اسلام کتنا چاہتا ہے کہ ہارمنی ہو, لوگوں کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں, لوگ آپس میں دشمنیاں نہ رکھے. تو یہاں تک ترتابو تک آپ بریکٹ لگا لو, ٹھیک ہے. یہاں تک قرض کا معاملہ اب ختم ہو گیا. اب آگے کیا ہے معاملہ؟ اب آگے معاملہ ہے, یہ اگلی جو لائن ہے اس کے اندر معاملہ ہے, جب آپ جس کو کیش ٹرانزیکشن کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. الا سوائے, یہ ساری باتیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی باتیں؟ یہ لکھنے کی, یہ گواہ رکھنے کی, یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں نا ترتابو تک, شروع سے لے کے اب تک. ایک بات کیا ہوئی تھی, ایک اجل مسمہ تک لکھو. نمبر ٹو فکتبو ہو. نمبر تھی وستشیدو, گواہ بنا لیا کرو. اس کے بعد گواہوں کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ذالکم سے کیا ہے یا ولا تسأموا سے کیا ہے, اس چیز کو آگے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ چھوٹا اور بڑا بھی قرض لکھو. اور ذالکم سے کیا ہے, جتنی حکمتیں ہیں اس کے اندر وہ بتا دی. اب یہ سب چیزوں کی نہ گواہ بنانے کی ضرورت ہے, نہ لکھنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی اسپیسیفک ڈیٹ مقرر کرنے کی ضرورت ہے. کس سچویشن میں ایکسیپشن کب ہے اس کی؟ الا ان تکونا تجارت حاضرہ, جب حاضر تجارت ہو. حاضر تجارت کا مطلب کیا؟ جیسے آپ دکان پہ گئے, آپ نے پیسے دیے اور چیز لے لی. اب ضرورت نہیں ہے کہ لکھیں اور آپ گواہ بنائیں اور آپ یہ کریں, تب نہیں ضرورت. ہاں اگر لکھ لیتے ہیں نا تب بھی ٹھیک ہے, لیکن لازم نہیں ہے. جیسے آپ یہاں پہ جاتے ہیں دکان پہ, تو دیکھیں یہاں پہ تو خاص طور پہ جو بھی ڈیلنگ ہوتی ہے فوراً وہ آپ کو رسید دیتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے $20 دیے, انہوں نے آپ کو 15 واپس لوٹا دیے اور 5 رکھ لیے نا, سارا لکھا ہوتا ہے آپ نے یہ یہ چیز خریدی, اتنے کی یہ تھی, اتنے کی یہ تھی, اتنے کی یہ تھی, پر پاؤنڈ اتنی تھی اور آپ نے اتنے پاؤنڈ دیے, سب لکھا نا. تو وہ ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ جب آپ ریٹرن کرانے جاتے ہیں تو ریٹرن پالیسی میں उनको फिर ये रसीद दिखाते हैं तो हेल्प हो जाती है। तो अगर लेकिन नहीं भी करते, अब अल्लाह ताला ने इसमें इंसान को सहूलत दी, क्योंकि देखें अगर हर वक्त ये होता, कोई जरा सी माचिस भी लेने जा रहा है, मिर्च लेने जा रहा है, नमक लेने जा रहा है, हर वक्त उसको लिखाई करनी पड़ी, तो पहले जमाने में तो नहीं ना ये कैश रजिस्टर होते थे कि रसीदें फौरन प्रिंट होके निकल रही। तो अगर लिखना पड़ता सौदा तो वो तो दुकानदार तो बैठा सारा दिन यही करता रहता, तो कितनी मुशक्कत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इससे इंसानों को बचाया कि अगर हैंड टू हैंड इस तरह से हो रही है कोई पेमेंट तो फिर कोई जरूरत नहीं है। दुदी रूनहा बहिना को, तुम लेन देन करते हो आपस में, जो हाजिर तिजारत का लेन देन आपस में करते हो ना, फिर उसके अंदर कोई लिखने की जरूरत नहीं। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, तो नहीं है तुम पे कोई गुनाह कि तुम ना लिखो। समझ आ गई बात? अन तकूना से क्या पता चला? इल्ला के बाद, कि जब ये सिचुएशन हो। कौन सी सिचुएशन? अन तकूना तिजारतन हाजिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, जब हाजिर तिजारत हो, जो तुम लेन देन करते हो आपस में, तो क्या करो? फलैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है तुम पे, अल्लाह तक तो हुआ कि तुम ना लिखो उसको, कोई हर्ज नहीं, ना लिखने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है, ताकि तुम एक मुश्किल में ना पड़ जाओ। अब इसी तरह बाज ट्रांजेक्शन ऐसे होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी दोस्त ने कहा, और देखे $10 जरा मुझे देना, मैं ये मेरे कम हो गए हैं पैसे, मैं जरा इसको दे दूं, मैं बाद में तुम्हें देती हूँ। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। वाई? इसलिए कि इसमें कोई अजल नहीं है ना मुकर्रर, ठीक है, ऐसा लेन देन तो चलता रहता है। वह अशहीदू इदा तबायातुम, गवाह बना लो जब तुम बाहम खरीदो फरोख करो, जब बै करो, तिजारती मामलात हो, बड़ी कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो उसमें तुम गवाह बना लिया करो। यानी कैसा सौदा? एक तो छोटा मोटा सौदा खरीदना है ना, जैसे अभी हमने बात की, मगर एक होती है कोई बड़ी ट्रांजेक्शन, कोई बै, तो वो जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो उसमें जरूर गवाह बना लिया करो, ठीक है। हालांकि ये हाजिर सौदा है, फिर भी गवाह बनाना इसमें अच्छा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, और उसके ऊपर गवाह भी बनाए जाते हैं, और फिर इसी तरह दो कंट्रीज के दरमियान भी जब मुआहदा होता है, तो इसी तरह फिर वो सिग्नेचर कर रहे होते हैं ना, विटनेसेस जो होते हैं, इस तरह आप घर वगैरह लेते हैं तो फिर भी करते हैं। वला युदारा कातिब वला शहीद, और याद रखो ना जरर पहुंचाया जाए कातिब को, लिखने वाले को, और ना गवाह को। कैसे जरर पहुंचाया जाता है कातिब को? कातिब को कैसे जरा पहुंचाया जाएगा? मसलन उसको प्रेशराइज किया जाए कि तुम ये लिख लो, उसके ऊपर कोई धूस जमाई जाए। इसी तरह गवाह को कैसे प्रेशर किया जाता है, जरा पहुंचाया जाता है? तो आप देखे थे गवाहों को तो जान से ही मार देते हैं कई लोग, और उनको पता चल गया हमारे खिलाफ गवाही देने जा रहा है, इसीलिए तो लोग डरते हैं कि हम क्यों जो है ना गवाह बने। आपने देखा हमारे मुल्कों में कोई गवाह नहीं बनना चाहता, उनको तो फौरन धमकियां मिलनी शुरू हो जाती, थ्रेट्स आने लगती है। इसके अलावा भी देखें, जो इतना सताया जाता है उनको गवाहों को, कि साल के तौर पे सारा सारा दिन बुला के बिठा देते हैं, वो काम अपना कारोबार छोड़ के आए हुए, अब उनके अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, थानों के चक्कर लगवा रहे हैं, फिर पुलिस उनको तंग कर रही है, फिर अब वो किराया अपना लगा के भी आ रहे हैं, फिर अपनी काम भी छोड़ के आ रहे हैं, उनका कितना हर्ज होता है। तो जब कोई गवाह आए उसको तकलीफ नहीं देनी, यानी अब उसकी जो, और कातिब को भी, कातिब के लिए भी है, दोनों के लिए, इसलिए कि इनकी जो सिक्योरिटी है उसका, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो इस्लामिक स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दो लोगों को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। कितना अच्छा निजाम हो जाए ना, देखिए, क्योंकि अगर गवाहों को लोग मार दें या उनको थ्रेट्स आने लगे, वो ही डर जाए, तो देखो इसीलिए तो हमारे यहाँ आधे केस तो सॉल्व ही नहीं होते, गवाह आते ही नहीं, उनको इतनी थ्रेट्स आ रही है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है, अब कोई पढ़े इसको तो पता चले ना कि यहाँ पे क्या हुक्म है। कितना इंसाफ हो जाए हमारे मुल्कों के अंदर अगर इन अहकाम को फॉलो किया जाए। हम कहते तो बड़ी खुशी है कुरान में हर चीज का हल है, वो हर हल है तो तुम उसकी तरफ जाओ भी तो सही, कभी इसको उठा के देखो भी तो सही है। फिर अगर इतने ही तुम कॉन्फिडेंट हो कि कुरान में हर चीज का हल है, तो फिर आओ इसकी तरफ। बस हल तो है, लेकिन हम अपने मसले कुरान से हल नहीं कराना चाहते, यही होता है ना, इसीलिए तो हम नहीं आते इसकी तरफ, ना सीखना चाहते, ना समझना चाहते, ना देखना चाहते इसको। लेकिन फखर से बताते फिरते इसमें हाल हर चीज का। किसी को पता चल जाए उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं मिल रहा है तो चाहे उसको फ्लाई करके वहां पहुंचना पड़े, वहां पे जाता है, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ, वो किसी किस्म का भी प्रॉब्लम। लेकिन क्या बात है कि हम कहते हैं कि कुरान में हर मसले का हल है और उसके बाद इसकी तरफ नहीं आते। या तो हमारी बात झूठी है, तो कुरान तो हम तो हमें ईमान है कि कुरान तो नहीं झूठ, हमारी बात झूठी है। ओके, हम झूठ बोलते हैं फिर हमें इसका यकीन नहीं, हम मुंह से बोलते हैं बस। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अब तकलीफ किस चीज से पहुंच सकती है? अब देखें, गवाह को एक ये भी तकलीफ हो सकती है कि भाई वो पैसे स्पेंड करके आता है, किराया उसका लगता है, उसका टाइम जाया होता है, तो उसको उसके जो एक्सपेंस है उसका, जिसको जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक्सपेंस, जो उसके आने का, उसके खाने पीने का, वहां पे स्टे करने का, वो सारा एक्सपेंस पे किया जाए। इसी तरह अगर वो अपना काम छोड़ के आया है, अपना टाइम दे रहा है, तो उसका उसको पेमेंट की जाए, उसको डराया धमकाया ना जाए, उसको किसी तरह का प्रेशर ना हो। इसी तरह जो कातिब है वो भी, उसको भी कोई ऐसी प्रेशर में आके तंग करके कोई चीज नहीं लिखवा लेनी चाहिए। और इसका दूसरा भी मतलब है, ला युदारा एक है ना, ना जरर पहुंचाया जाए इनको, और ये मजबूर मारूफ भी है, वो ना जरर पहुंचाए, ये कातिब और शहीद भी ना किसी को जरर पहुंचाए। ये कैसे पहुंचा सकते हैं जरर? कातिब अदल से ही ना लिखे तो उसने जरर पहुंचाया है ना, और शहीद भी कैसे जरर पहुंचा सकता है? तो कोई गवाही है उसको छुपा लिया, कोई बात है उसको हक के खिलाफ कह दी। तो ये हमेशा हमेशा के लिए देखें, क़यामत तक के लिए कुरान ने कितनी प्यारी इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब हम मुसलमान हैं, हम ही इसको फॉलो ना करें तो कौन फॉलो करेगा? हमने तो इसको बिल्कुल वो बना दिया कि नहीं ये तो बस सवाब कमाने की चीज है। कितनी दफा हम इन आयतों से गुजरे होंगे, कभी किसी को पता था कि ये गवाहों के लिए भी ये लिखा हुआ कुरान में? इनको ना सताया जाए ना ये कोई इनका, इसी तरह ये भी इनको सताना हो गया ना कि इनका मुआवजा दबा लिया जाए, ये अब दे ही नहीं रहे पैसे इनको। वह इन तफालू फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, अगर तुम करोगे ये, क्या करोगे, क्या करोगे, ये जो पीछे बात आ रही है, यानी कातिब या गवाह को तुम तकलीफ पहुंचाओगे या फिर कातिब और गवाह किसी को तकलीफ पहुंचाए, तो क्या है ये, कोई छोटी बात नहीं है। फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, बेशक वो गुनाह होगा तुम्हारे लिए, ये नाफरमानी है। क्या है? और बी आ गया, देखिए फुसूकुम बिकुम, फिस्क के बाद बा, अक्सर ऐसे नहीं आता, ये गुनाह होगा साथ तुम्हारे, यानी ये चिमट जाएगा तुम्हें, ऐसा गुनाह है। देखिए उस माशरे का क्या हाल होगा फिर जिसमें ये गुनाह हो रहा होगा, क्या वहां पे इंसाफ होगा? होगा वहां पे इंसाफ? इसीलिए आज देखिए हमारे यहां कितने भी बड़े बड़े इतने क्राइम्स लोगों की नजरों के सामने भी हो जाते हैं, कोई गवाही देने वाला नहीं, लोग डरते हैं। और लोग ये भी कहते हैं हमें मुसीबत क्या पड़ गई, हम अपना सारा काम छोड़ के इन झमेलों में पड़ गए, क्योंकि उनको बहुत सताया जाता है। कातिबों को भी धमकी आने लगती है, उनको भी प्रेशर में डाला जाता है। तो ये इतना गुनाह है बड़ा जो चिमट जाएगा पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी को खराब कर दे। तो जो बातें तुम्हें समझाई जा रही है इनके खिलाफ ना करो, इसको कोई बुरा समझता है? बल्कि लोगों ने तो गुंडे रखे होते हैं इस काम के लिए कि जो है ना, जो इनको जो गवाहों को डराते धमकाते हैं, और आराम से लोग निकल जाते हैं क्राइम करके। अल्लाह से डरो, डर जाओ अल्लाह से, ये काम मत करो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है, ये बातें तुम्हें किसी और ने सिखाई, ये अल्लाह तुम्हें खुद सिखाता है। देखिए एक बात आपने नोट की, कितनी तवील आयत है और एक एक चीज इसमें डिस्क्राइब की गई है। नमाज के बारे में फरमा दिया गया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, और हमारे नबी ने हमें सिखाई कि किस तरह पढ़नी है। रोजे कह दिया गया रोजे रखो, कैसे रखने ये हमारे नबी से हम सीख लेंगे। हज अदा करो ये कहा गया सिर्फ, हज का तरीका क्या है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लेंगे। लेकिन कर्ज का मामला ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाता है वा युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुद तालीम दे रहा है इसकी, खुद अल्लाह ताला सिखा रहा है। इससे पता चला कि दीन के जो मामलात हैं उनको पूरी तरह अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी है। जो चीज अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने मैंने सिखाई है, तो क्या उसकी अहमियत नहीं समझते आप कितनी होनी चाहिए। और तकवा तकवा तकवा, इसलिए कि ठीक है कानून बना देते हैं आप, कानून का खौफ भी एक होता है, मगर खुद सोचें कानून आपके साथ 24/7 तो नहीं ना चिमटा रह सकता। एक हद तक आपको पुलिस का भी खौफ होगा, ये ना पकड़ ले फलां, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन वो 24/7 मिनट मिनट तो किसी के साथ नहीं रह सकते ना। हर हर बंदे के साथ तो एक गार्ड नहीं वो खड़ा कर सकते कि भाई सीधे चलना है, तुमने ये नहीं बेईमानी करनी, तुमने ऐसे नहीं करना। एक हद तक ही कानून जाहिर है इंसानों के बनाए में, वो एक हद तक ही किसी को पकड़ भी सकते हैं या एक हद तक किसी को वॉच भी कर सकते। उसके बाद क्या है, ये तकवा है जो इंसान को सीधा रखता है। तकवा जब इंसान के अंदर होगा ना, तो वो हर हाल में चाहे पुलिस सामने है या नहीं, चाहे हुकूमत है या नहीं, चाहे गार्ड है या नहीं, कोई भी नहीं हो, अल्लाह का डर उसके लिए काफी है कि वो सीधा रहे। और अफसोस से कहना पड़ता है हमारे माशरे में कानून नाम की तो चीज है ही नहीं, तकवा भी नहीं है। अगर तकवा अकेला ही होता ना तो तब भी बहुत चीजें सही हो जाती, लेकिन तकवा ही नहीं है। इसीलिए कहीं करप्शन है, कहीं किसी की हक तलफी है, कहीं गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, कहीं इंसाफ नहीं। जब तक याद रखें कानून तो आप बना लें, जितने भी अच्छे से अच्छे कानून बना लें, जब तक उसके साथ तकवा नहीं होगा ना, किसी मुल्क के अंदर अमनो आमान, इंसाफ और सबके हकूक सही से सबको मिल रहे, ये नहीं हो सकता। तकवा तकवा तकवा, वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, खुदा खौफी है जो इंसान को हर मामले में सही रखेगी। आखरत की जवाबदेही का एहसास अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, तो कानून कब तक तुम्हें संभालेगा। और देखें सदर, वजीर, एमपीए, एमएलए, ये सब लोग जो है ना, हर एक बंदे के साथ थोड़ी हम कहते हैं वो करप्ट, तो हम खुद क्या हैं। खुद इंसानों के अंदर कोई तकवा ही नहीं, वो आगे घर घर पहरा तो नहीं देने खड़े हो जाएंगे ना, पुलिस के हर घर में आगे खड़ी हो जाए, हर बंदा नाप तोल कर रहा है, एक बंदा तराजू लेके बैठा हुआ उसके साथ भी एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए, एक बंदा गवाही दे रहा उसके साथ भी एक खड़ा हो जाए, एक बंदा बाजार में सौदा सलफ कर रहा उसके साथ भी एक खड़ा हो जाए, घर में आप बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो तकवा ही है जो आपको सही रखेगा ना, कि मेरे साथ अल्लाह के गार्ड्स खड़े हुए हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, ये हैं जो मेरे किरामन कातिबीन है जो लिख रहे हैं, ये गार्ड्स, इनका एहसास हो तब सही चलेंगे हम। अगर हम यही वेट करते रहते हैं कि पुलिस होगी तो मैं सीधी चलूंगी, तो तकवा फिर कहां है हमारे अंदर। अल्लाह का डर तो है नहीं, पुलिस का याद रखा हुआ, अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का जानने वाला, उसने जो कानून तुम्हें दिया है ना वो अपने इल्म की बेसिस पे दिया है। देखें जिसके पास आधा इल्म हो ना, आप उससे राय नहीं लेते। मिसाल के तौर पे आप कहें कि किसी कोई डॉक्टर नहीं है और आम आदमी है, तो आप उससे ना आके जाके अपना इलाज नहीं करवाना शुरू करते, तो आप कहते हैं इसके पास इल्म ही नहीं, ये मुझे सही कहाँ बात बताएगा। किसी डॉक्टर के पास जाके आप कोई कानून के नुक्ते नहीं पूछते, तो आप कहते हैं इसके पास कहाँ इल्म है, ये मुझे सही गाइड नहीं कर सकता। गाइड आपको सही कौन कर सकता है, किसके पास आप जाते हैं। आपको कोई हार्ट की डिजीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, पैर के डॉक्टर के पास नहीं चले जाएंगे। आपको पता है कि दिल का डॉक्टर ही मुझे सही बात बता सकता है, इसके पास इल्म है, तो आप ट्रस्ट किसको करते हैं? जिसके पास उस चीज का इल्म होता है। और अल्लाह कौन है जो बिल्कुल ही शैन अलीम है, हर चीज का इल्म रखने वाला है, और हम उसकी बात को छोड़ के और हम दूसरी चीजों के पास जाएंगे, वहां से मैं इल्म ले लूं और ये मुझे बता दे कि कैसे चलना चाहिए, वो मुझे बता दे, वो कैसे बता सकते हैं? उनके पास तो हर चीज का इल्म नहीं है। कोई दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता, कितना ही किसी को आप इतना बड़ा समझे, कोई दुनिया में ये कह सकता है? वो जो खुदा बने बैठे हैं नाउज बिल्ला, जो खुद अपने आप को खुदा कहते हैं, वो भी नहीं ये कह सकते कि हमें बिल्कुल ही शही नलीम है, हम वो भी नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा, जो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, समझे ना? तो फिर किसके पास जाना चाहिए गाइडेंस के लिए, किसके पास जाना चाहिए कि सही कानून क्या है, सही रूल्स क्या होने चाहिए कर्ज लेने के देने के, गवाही औरत की आधी होनी चाहिए कि पूरी होनी चाहिए, मर्द के बराबर होनी चाहिए, हाँ किसके पास जाना चाहिए पूछने के लिए? अल्लाह के पास, क्योंकि वो हर चीज का इल्म रखता है। उसका आधा छोटा मोटा ऐसा इल्म नहीं है, कमजोर इल्म नहीं है, हर चीज का, हर चीज में सब कुछ आ जाता है, माजी हाल मुस्तकबिल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की उसको कोई कैद नहीं है, कोई उसके लिए लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए सब एक ही जैसे हैं, हाजिर और गायब, जो आपके सामने है आपके पीछे, हाजिर गायब आपके लिए है, अल्लाह के लिए कोई चीज गायब है ही नहीं। तो सोचें जरा कि अल्लाह ताला ने, ऐसे रब ने जो बिकुल्ली शैइन अलीम है, उसने लंबी सबसे लेंथी आयत हकूकुल इबाद से मुतल्लिक नाजिल फरमाई है, इसलिए कि हकूकुल इबाद में ही हमसे सबसे ज्यादा गलती होती है, और उनमें भी माल की इंसान को इतनी हिर्स होती है ना कि माल में इंसान जरूरी डंडी मार जाता है। जिन लोगों के इंसानों से मामलात साफ नहीं है, तो इनकी इबादत उनको वहां पे क्यामत के दिन छुड़ा नहीं सकेंगी। मामलात को सही करें, हकूकुल इबाद में ऊंच नीच ना हो, इसलिए कि क्यामत के दिन आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मुफलिस कौन है, सहाबा से पूछा तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह हमारे नजदीक तो मुफलिस वही है जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ चीज नहीं होती, वो कोई दिरहम दिनार वगैरह नहीं होते। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि कयामत के दिन जब वो आएगा तो उसके पास ढेरों नेकियां होंगी, ढेरों नेकियां होंगी, कई नमाज की गठड़ियां हैं, कई हजों की गठड़ियां हैं, कई सदका खैरात की गठड़ियां, इतने अंबार हैं, पहाड़ के पहाड़ हैं जी, इतनी इसने तो नेकियां की है ना, इतनी इबादतें करता रहा है, लेकिन किसी को गाली दे दी, किसी का हक मार लिया, किसी का माल दबा लिया, किसी पे तोहमत लगा दी, किसी को कुछ कर दी, तो अब सोचें जब वो सारे लोग आएंगे अपने हक लेने के लिए, किसी को गाली दी है, अब उसने बदला चाहिए उसको यहाँ पे, अब बदला कैसे दिया जाए, अब इसकी नेकी को ले लेंगे, कहा जाएगा कि जाओ ये नमाजों की जो पहाड़ है ना ये तुम ले जाओ इसकी, और वो तुम्हारे पर तोहमत लगाई थी, ये इसके तहज्जुदों का जो पूरा अंबार, इतनी तहज्जुदें रोज पढ़ती थी, ये तहज्जुदें तुम ले जाओ, और ये जो रोजे रखती थी, ये तुम्हारा माल इसने हड़प किया था, ये रोजे रखती थी, वो तुम ले जाओ इसके सारे रोजे। ये करते 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 अभी इतने लोग खड़े होंगे, अभी इतने लोग इंतजार में होंगे, इसकी तो नेकियां भी खत्म हो जाएंगी, अभी तो बहुत सारे लोगों के हकूक देने हैं, क्योंकि तो रोज का यही काम था, हम नमाजें रोजे रख के समझते हैं ना कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम तो इतने नेक हो गए हैं, बस कुरान पढ़ लिया, उधर सीख रहे हैं, उधर सुना रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के हकूक हम रोज मार रहे हैं, रोज दबा रहे हैं, उसको कोई बड़ी चीज ही नहीं समझ, तो ये देखे क्या मामला हो रहा है। अब अल्लाह के सामने वो उनकी लाइनें लगी हुई है और ये बंदा अकेला खड़ा है, अब इसकी वो नेकी भी वो लेके जा रहा है, वो नेकी वो लेके जा रहा है, अब वो भी ना नमाजें रही, अब ना उसके पास तहज्जुदें रही, वो तो बड़ा खुश होके आया था, मेरे पास तो रोज मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, तो तहज्जुद गुजार हो, लेकिन देखो लोगों को तकलीफ तुम किससे पहुंचाती हो, अपनी जुबान से। हाँ तो अब ये सारी चीजें अब लोग लेके जाते जा रहे हैं, अब क्या नेकियां खत्म हो गई। अब वो खड़े में कि हमें तो अभी चाहिए, इसने तो मेरे साथ ये ज्यादती की, उसने मेरे साथ ये किया, तो अब क्या होगा। उनके गुनाह इसके ऊपर डाले जा रहे हैं, उनके गुनाह इस पे डाले जा रहे हैं। किसी की चोरी डाल दी इसके ऊपर, किसी का सूद खाना इसके ऊपर आ गया, किसी का झूठ बोलना इसके ऊपर आ गया। अब ये उनके गुनाहों तले ऐसा दब जाएगा कि ये जहन्नुम में चला जाएगा। फरमाया ये है मुफलिस, ये है गरीब, जिसको आप गरीब कहते हैं ना, मुफलिस गरीब, ये गरीब है। कभी आपने ऐसा गरीब भी देखा कि कंगाल हो जाए, जो दिवालिया हो गया उसका, इतनी नेकियां लेकर आया था, आप देखो कैसे रह गए। तो हकूकुल इबाद के ऊपर ये लंबी तरीन आयत थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और एक्सेप्शनल केस है, वह इन कुन तुम अला सफर, और अगर तुम सफर में, वलम तजिदू कातिबन, और ना तुम पाओ कोई लिखने वाला, कोई लिखने वाला भी नहीं है वहां पे, सफर में जा रहे हैं, जाहिर है तो कोई कातिब नहीं मिल रहा, तो क्या करो, फरीहान मकबूदा, तो रहन रख दो कब्जा कीने का। रहन क्या चीज होती है? रहन वो चीज होती है कि मसलन, मिसाल के तौर पर, ए अगर बी को कर्ज दे रहा, तो ए कहता है कि जी आप गारंटी के तौर पे मुझको मेरी कोई चीज तो अपनी मेरे पास रखवा देना, तो बी कहती है कि अच्छा मेरे पास ये जेवर है, ये मेरा जेवर आप अपने पास रख लें, ए को दे देती है जेवर, और इसके मुकाबले में आप मुझे मिसाल के तौर पे ये जेवर तकरीबन 10,000 का होगा, तो ऑलमोस्ट 10-11,000 की रकम आप मुझे दे दें, ठीक है। तो ए अब गारंटी के तौर पे उसका जेवर रखती है और बी को पैसे दे देती है। अब बी जब ये कर्ज अदा करेगी वापस ना, तो ए उसको उसका जेवर दे देगी। अगर बी कभी ये रकम ना अदा कर सकी तो फिर क्या होगा, ए कम से कम ये तो करेगी ना कि जेवर बेच के और अपने तो पैसे वापस ले ले, उसको तो ना नुकसान हो। तो ये एक गारंटी रखवाई जाती है, जिसको कहते हैं ना प्लेज करा लिया कोई चीज, कोई लोग अपना घर प्लेज करा लेते हैं या जेवर या कोई ऐसी चीज प्लेज करा देते हैं। तो इस तरह इंसानों के दरमियान आपस में भी ये मामलात हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मसलन है कि कोई कातिब अगर मिल भी जाता है मिसाल के तौर पर, या सफर नहीं भी है, फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं जी मैं आपको कहां जानूं, क्या पता कल को क्या मामलात होते हैं, तो मैं तो नहीं ट्रस्ट करती, आप ऐसा करें मुझे गारंटी के तौर पे कोई चीज मेरे पास रखवाएं, तो उसको कहते हैं रहन। तो रहन जब उसके कब्जे में दे दिया, उसको दे दिया, ये नहीं कि मैं अच्छा मैं अपनी जेवर रखवाती हूँ लेकिन जेवर मैं अपने पास ही रखे छोड़ू, नहीं उसको देंगे आप जेवर। अब जब तक आप उसका कर्ज अदा नहीं करते वो आपको जेवर नहीं वापस दे, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि वो उस जिसने कर्ज दिया है ना, वो ये नहीं कर सकती है कल को वो किसी पार्टी में जाए तो वो जेवर पहन के चली जाए, नहीं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, उससे फायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर उसने उससे फायदा उठाया तो ये क्या होगा, ये सूद हो जाएगा, ठीक है। या कि जैसे किसी ने अपने मकान वगैरह गारंटी के तौर पे प्लेज करा देते हैं, तो अब मकान दूसरे को दिया तो वो जाके उसमें रहना शुरू कर दे, या वो मकान को किराए पे देके किराया खाना शुरू कर दे, नहीं ये नहीं कर सकता वो कर्ज देने वाला, वो अपने पास रखेगा, ये उसके पास अमानत है। अब अमानत वो वापस कब कर देगा, जिस वक्त उसको उसका जो उसने कर्ज दिया था वो उसको वापस मिल जाएगा। इससे अगर कोई किराया आता है या कोई फायदा हो रहा है तो वो उसी को जाएगा जो कर्ज लेने वाला। फइन आमिना बादुकुम बादन, फिर अगर एतमाद हो जाए, इत्मीनान हो जाए, यानी अगर उसने अमीन जाना तुम में से किसी एक ने दूसरे को अमीन जाना, अमानतदार जाना, मसलन कर्ज देने वाले ने कर्ज लेने वाले को अमीन जाना, तो अब क्या चाहिए, फल यू अदिल लदी तू बिना अमाना पहले, तो उसको चाहिए कि वो भी फिर कर्ज को वापस कर दे। अगर सिक्योरिटी में उसने कुछ नहीं रखवाया, कुछ नहीं रखा कर्ज देने वाले ने, जिसने दिया है उसने कहा कि नहीं जी मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी चीज ना रखवाएं, आपको मैं कर्ज देती हूँ, तो अब क्या है, चाहिए कि वो शख्स जो मकरूज है वो इस अमानत को लौटा दे, यानी जो कर्ज है अब उसको लौटाना चाहिए अच्छी तरह, वक्त पे अदा कर दे अब। और दूसरी तरफ भी हो सकता है, जो जिसको इसने कर्ज लेने वाले ने ट्रस्ट किया कर्ज देने वाले को कि मैं अपनी मैं मसलन अपना जेवर उसको पास रखवा रही हूँ और उससे कर्ज ले रही हूँ, तो मैंने अपना जेवर इसको ट्रस्ट करके दिया। अब ये नहीं है कि वो जेवर अब रख ही ले, हजम कर जाए। अब मैं उसको जब कर्ज लेके वापस जाती हूँ उसके पास, ये दिए मैंने आपका कर्ज लौटा दिया, अब आप मेरा जेवर मुझे दे दें, तो ये नहीं कहेगी कि नहीं मुझे तो अब पसंद आ गया है ये सेट और मैं नहीं रखना है और मैं तो नहीं देती अब। नहीं, ये उसके पास अमानत थी, उसको वापस करना थी। तो दिस गोज बोथ वेज, ओके, बोथ वेज जाएगा। अगर उसने इसके ऊपर ट्रस्ट किया और इसको बगैर कोई रहन रखे हुए कोई चीज के वो इसको कर्ज दे दिया, तो मकरूज को चाहिए भाई अमानत वापस करे, टाइम पे कर्ज दे दे वापस। और अगर मकरूज जो है उसने कोई चीज रहन रखवाई है, तो अब जिसके पास उसने रहन रखवाई है उसको भी चाहिए कि जब ये कर्ज लेके वापस अदा कर दे तो वो भी रहन रखी हुई चीज को वापस दे दे, ठीक है। तो उसको चाहिए अमानत वापस कर दे, क्योंकि वो अमीन बनाया गया ना। वलियत्तकिल्लाह रब्बहु, और चाहिए कि अल्लाह से डरे जो रब है उसका। फिर खुदा खौफी की बात आ गई, फिर तकवा की बात आ गई। देखिए तकवा 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 कितनी गर्दान है तकवा की। इसीलिए कुरान पाक में 200 से ऊपर दफा तकवा की बात आई है। अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। इसीलिए बार बार जो हुक्म आता है ना, सिर्फ अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे देते कि ये करो ये करो ये करो, अल्लाह के डर के साथ तुम चलोगे तो ये हुक्म भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं है ना, तो ये सारे अहकाम ऐसे होंगे, हाय अब ये भी करना पड़ेगा, हाय अब ऐसा भी होगा। नहीं, तकवा होगा, अल्लाह का खौफ होगा कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना ना, फिर आप देखिएगा कोई हुक्म आपको मुश्किल लगेगा ही। याद रखें, अगर आपको कोई हुक्म मुश्किल लग रहा है तो तकवा पे गौर करें, मेरे अंदर तकवा कितनी कमी तकवा में है। हुक्म बोझल नहीं होता, आपके अंदर तकवा की कमी है। इसीलिए देखें तकवा की एक मिसाल है मुस्नद में, मुस्नद अहमद में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने दूसरे शख्स से 1,000 दीनार उधार मांगे। उसने कहा गवाह लाओ, उसने जवाब दिया अल्लाह की गवाही काफी है। अब उसने कहा जमानत लाओ, उसने कहा अल्लाह की जमानत काफी है। उसने कहा तूने सच कहा है, ठीक है, एक अदायगी की वो अजल मुकर्रर हो गई कि हाँ ये स्पेसिफिक डेट है, उसको मैं वापस करूंगा। तो उसने उसको 1,000 दीनार गिन के दे दी। अब वो कहीं समुन्दर का उसने सफर किया, कहीं चला गया वो आदमी जो जिसने कर्ज लिया था। अपने काम से जब फारिग हुआ और वो जो डेट थी मियाद थी वो पूरी होने को आई, तो समुन्दर के करीब आया कि कोई कश्ती मिल जाए, कोई जहाज मिल जाए, मैं इसमें बैठ के जाऊं, रकम अदा करके आऊं। लेकिन कुछ भी ना मिला। जब देखा कि वक्त पे पहुंच ही नहीं सकूंगा, तो उसने एक लकड़ी ली, उसको बीच में से ना कट किया और उसमें 1,000 दीनार रख दिए और एक पीस ऑफ पेपर भी रख दिया। फिर मुंह को बंद करके अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार तुझे खूब पता है मैंने फलां शख्स से 1,000 दीनार कर्ज लिए थे, उसने मुझसे जमानत मांगी थी, तो मैंने तुझे जामिन बनाया था और वो इस पे खुश हो गया था। उसने गवाह मांगा, मैंने गवाह भी तुझे को बनाया, वो इस पे भी राजी हो गया। अब जबकि अपना कर्ज अदा करने आया हूं तो कश्ती ही नहीं मिल रही, अब मैं उस तक रकम कैसे पहुंचाऊं। अब वो समंदर में डाल देता, दुआ करता है ये रकम या अल्लाह तू ही अब उस तक पहुंचा दे। फिर वो जब उसने लकड़ी को समंदर में डाल दिया, खुद चला गया, लेकिन फिर भी कश्ती ढूंढता रहा कि कहीं मिल जाए तो मैं जाऊं अब जाके उसको देख लूं। अब यहां तो इधर तो ये हुआ, वहां वो जो आदमी था ना जिसने कर्ज दिया था, जब उसने देखा कि वक्त पूरा हो गया, आज इसको आना चाहिए, आज की डेट में इसने कहा था, तो वो गया समुंदर के पास जाके खड़ा हो गया। तो अब कि अब्बा है अब्बा है, अब मुझे मेरी रकम दे, या किसी के हाथ हो सकता है भिजवाएगा। मगर शाम हो गई, कोई भी नहीं आया, ना कोई कश्ती आई ना कोई। तो अब ये वापस लौटा, किनारे पे एक लकड़ी देखी, तो उसने ये समझ के उठा ली के खाली हाथ तो जा ही रहा हूं, इस लकड़ी को ले जाता हूँ, फाड़ के सुखा लूंगा, जलाने के काम आएगी घर में। तो घर पहुंच के जब उसको काटता है तो खना खन बचती हुई जो वो गोल्ड कॉइन्स थे वो निकलते, गिनता है तो पूरे 1,000। वहीं पे उसकी वो पर्ची पे नजर पड़ती है, उसको उठा के पढ़ता है। फिर एक दिन वो ही आदमी आता है जिसने उससे कर्जा लिया था, वो आके 1,000 दीनार उसको देता है, कहता है ये लें आपकी रकम और मुझे प्लीज माफ कर देना, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं वादा खिलाफी ना करूं, लेकिन कश्ती के ना मिलने की वजह से मजबूर हो चुका था और इसलिए मैं देर मुझे लग गई। आज कश्ती मिली है, मैं आपकी रकम लेके हाजिर हूँ। उसने पूछा, क्या मेरी रकम आपने भिजवाई भी है? उसने कहा, मैं तो कह चुका हूँ मुझे तो कश्ती मिली ही नहीं। कहता, लेकिन आपने भेजी भी है रकम? कहा, नहीं, मैंने कुछ कश्ती तो नहीं मिली। उसने कहा, अपनी रकम वापस लेके खुश होके चले जाओ। आपने जो रकम लकड़ी में रखी थी और अल्लाह तवक्कल डाल दी थी, उसे अल्लाह ने मुझ तक पहुंचा दिया, मेरे मुझे रकम वसूल हो गई। ये हदीस बुखारी में भी आई है, 7 जगह पे आई है ये हदीस। यानी कितना तकवा था दोनों के अंदर, एक को देने की फिक्र थी और दूसरे ने भी ये नहीं कहा, इसको कौन सा पता कि मेरे पास तो पहुंच गई भी रकम, लाओ अब दूसरे एक और 1000 ले लेता हूँ, इसको थोड़ी पता है। और उसने भी ये नहीं सोचा कि मैंने भेज तो दिए मैं 1000, अब मुझे क्या जरूरत है दोबारा लेके चल पड़ो। बस ठीक है, अल्लाह का सपोर्ट कर दे, खुद ही उसने, अल्लाह ने पहुंचाने हैं, बस ठीक है, मामला खत्म मेरा, मैंने तो भेज दिया ना। उसने भी ये नहीं कहा, दोनों के अंदर अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा था। वला तख्तुमु शहादा, और शहादत को मत छुपाओ, जो गवाही है उसको नहीं छुपाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाह ना बताऊं? जो इंसान गवाही मांगने से पहले ही गवाही देने को तैयार हो जाए, यानी उसके पीछे भागना ना पड़े, उसकी मिन्नते समाजते ना करनी पड़े, वो खुद आके खड़ा हो जाए और गवाही दे, वो खैरु शुहदा है। तो गवाही को छुपाना नहीं, जब गवाही देने का वक्त आए तो गवाही दो, इसलिए कि गवाही को छुपाना जो है ना वो कबीरा गुनाह है। पता है अगर मामले का, सामने देखा हुआ, अगर विटनेस है, तो बस इसलिए कि अब हमें जाना पड़ेगा, अब हमें ये होगा, तो इस वजह से नहीं। وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, और जो छुपाएगा गवाही को, छुपाएगा उसको का मतलब क्या है, हा की जमीर किस तरफ जा रही है, गवाही को, जो गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार है। दिल गुनाहगार कैसे है, क्रिमिनल माइंडेड हो गया ना वो, इसलिए कि उसका दिल जानता है कि सच क्या है, फिर भी वो उसको छुपा रहा है। और जिसका दिल गुनाहगार हो गया तो उसका तो फिर कुछ भी नहीं रहा, इस गुनाह की जड़ें उसके दिल में। एक होता ना इंसान अनइंटेंशनली कोई गुनाह करता है, इतना मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी, बस भूल के उसके मुंह से कोई बात निकल गई, कोई भूल चूक से गैर इरादी तौर पर कोई इंसान से कोई गलती हो गई, नीयत नहीं थी उसने की, तो वो तो चलो ऐसे गुनाह हैं जिनके ऊपर वो गुनाह मतलब उन्होंने अपनी रूट्स पक्की नहीं की, मगर जो इंटेंशनली इंसान जानता है जान बूझ के फिर वो उसके बाद जाके वहां पे झूठ बोलता है या गवाही को छुपा लेता है, सच्ची बात नहीं बताता, तो ये वो गुनाह है जिसकी जड़ें दिल में घुस गई है, पेनिट्रेट कर गई अंदर तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ, जिस्म में एक पीस ऑफ मीट है, लोथड़ा है, ऐसा है कि अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, सही है, और अगर उसमें रोग आ जाए, वो बीमार हो जाए, तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है, वो है दिल, सारा मामला ही दिल का। देखो अगर आपका दिल सही है ना तो सारे मामला सही हो जाएंगे, कहीं गलती भी होगी तो वो इंटेंशनल नहीं होगी, और अगर दिल में खराबी है ना तो फिर तो प्लान बना बना के इंसान गुनाह करता है। वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको जानने वाला, ये है तकवा के लिए, अल्लाह को इल्म है तभी आपको अंदर तकवा आएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम ये समझते थे कि बहुत सारे तुम्हारे काम हमारे इल्म में ही नहीं, तुम ये समझते थे, जैसे इंसान समझता है ना कि पता नहीं अल्लाह को तो पता ही नहीं चला था, इतनी छोटी छोटी बात को अल्लाह कहाँ हिसाब किताब करेगा, इतनी सी बात का भला, मैं ये माली मामलात में जरा सा ही तो हेर फेर किया, इसे क्या फर्क पड़ता है, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात इंसानों से छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं छुपा सकते, तुम ये समझते थे कि तुम्हारे कुछ काम अल्लाह को पता ही नहीं चलेंगे। इस आखिरी बात का ताल्लुक सारी पिछली बातों से, जो भी तुम अमल करते हो, लिखने वाला जो लिख रहा है, गवाह जो गवाही दे रहा है, जो कर्ज देने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, तुम सब देख लो कि तुम्हारी हर अमल को अल्लाह जानता है, पिछली आयत के एंड में भी इल्म की बात है, इस आयत के एंड में भी इल्म की बात है। जब आपके जहन के अंदर ये होगा ना कि अल्लाह को पता है, उसको इल्म है, वो देख रहा है, फिर सारे मामला खुद ब खुद सीधे होने शुरू हो जाएंगे। और जहां पे ये बात भूलेगी तो फिर मामला में खराबी आएगी। खास तौर पे ये बात मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी कि जब इंसान अल्लाह के इस हुक्म को नहीं मानता, अगर मसलन ना लिखता है, ना ऐसी ट्रांजेक्शंस कर रहा है और फिर कहता है नहीं हमें तो शर्म आती है लिखते हुए, हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखवाए, दूसरा क्या कहेगा कि इसको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो इसका अंजाम क्या। इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उधार दे वो लिखे और जो बेचे वो गवाह कर ले। और अबू सुलेमान मरअशी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हज़रत काब की सोहबत बहुत उठाई, उन्होंने एक दिन अपने पास आने वालों से कहा, तुम उस मजलूम को भी जानते हो जो अल्लाह को पुकारता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तुम जानते हो? अरे मजलूम तो आपको पता है ना, मजलूम की तो आह अर्श तक पहुंचती है, लेकिन एक ऐसा मजलूम है तो वो मजलूम ही, तुम किसी ऐसे मजलूम को जानते हो जो अल्लाह को पुकारता है, हाय अल्लाह मेरे साथ ये जुल्म हो गया, लेकिन उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। लोगों ने कहा ये किस तरह? फरमाया ये वो शख्स है जो एक मुद्दत तक के लिए उधार लेता है, ना गवाह रखता है, ना लिखता पढ़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, फिर मुद्दत गुजरने पर तकाजा करता है, यानी अब कहता है कि मुझे मेरा कर्ज वापस दो, और दूसरा बंदा इनकार कर देता है। अब ये अल्लाह से दुआ करता है लेकिन अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता, इसलिए कि उसने काम जो किया है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया है, ये अपने रब का नाफरमान हुआ है। समझ आई ना? अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आयत लिखने के ऊपर, गवाह रखने के ऊपर इतनी बड़ी आयत उतार दी, इसने एट द फर्स्ट प्लेस अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अब चाहे आप जितना मर्जी कहो, अल्लाह ही इसको पूछे, जिसने मेरे पैसे मार लिए, जिसने ये कर लिया, अब अल्लाह ही मुझे देगा, भाई अल्लाह ताला अब दुआ नहीं कबूल करेगा, इसलिए कि आपने एट द फर्स्ट प्लेस अल्लाह की नाफरमानी की। ठीक है, तो आप तो ये समझते हैं ना कि हाय इस बेचारे के पैसे किसी ने मार लिए तो ये कितना मजलूम है, मजलूम तो है, लेकिन इस मजलूम को अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और यहां से हमें एक बात और भी पता चली कि मैंने आपको जैसे बताया था ना, डिक्टेट कराना किसका काम है, जो कर्ज ले रहा है, और गवाह बनाना किसका काम है, गवाह लेकर आना किसका काम है, जो कर्ज दे रहा है। ठीक है, इससे ये भी पता चला। अच्छा, फिर इसी तरह एक और रिवायत में आता है ऐसे शख्स के लिए कि जो फिर कर्ज देता है लेकिन उसके बाद फिर वो लिखता नहीं, ये इब्ने मर्दवे की रिवायत है। तीन शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह से दुआ करते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं की जाती। एक तो वो जिसके घर में बख्लाक औरत हो और वो उसको तलाक ना दे, दूसरा वो जो किसी यतीम का माल उसकी बलूगत के पहले ही उसको सुपुर्द कर दे, तीसरा वो जो किसी का माल कर्ज दे, किसी को माल कर्ज दे और गवाह ना रखे। तुमने खुद ही नहीं गवाह रखे, कर्ज देने वाला मुजरिम बन जाता है कि जब वो ना गवाह रखता है ना लिखवाता है। ठीक है, और यहां से ये पता चल गया ना कि कर्ज देने वाला गवाह रखेगा, इसलिए कि यहाँ पे कहा गया तीसरा वो शख्स जो किसी को माल कर्ज दे और गवाह ना रखे, तो इसने गवाह रखने के, यहां से ये साबित हो गया। इसी तरह ये जो पीछे बात गुजरी है कि एक ट्रांजेक्शन जो हैंड टू हैंड होती है उसके ऊपर ना गवाह रखने की जरूरत है और ना ही लिखने की जरूरत है, और इसके बारे में भी हदीस आती है मुस्नद अहमद में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी से एक घोड़ा खरीदा और अराबी आपके पीछे पीछे आपके घर की तरफ रकम लेने के लिए चला। जैसे इंसान कहता है ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं अभी देती हूँ तुम्हें, तो ये मुझे जरा $10 देना, मैं अभी तुम्हें देती हूँ, तो उसके लिए लिखने पढ़ने की नहीं जरूरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको फरमाया कि मैं तुम्हें घर पे देता हूँ, चलो आ जाओ, तो वो पीछे पीछे चल पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा जल्दी आगे निकल गए, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा था, तो लोगों को ये नहीं पता था कि ये घोड़ा बिक गया, तो लोगों ने कीमत लगानी शुरू कर दी कि भाई मैं इतने देता हूँ इतने देता हूँ, यहां तक कि जितने कीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उसने बेचा था उससे ज्यादा कीमत लग गई। ठीक है ना, जो रास्ते में लोग थे ना उनको थोड़ी पता है कि ये भाई घोड़ा बिक चुका है, अब वो तो कीमत लगा रहे हैं, अब उससे ज्यादा कीमत जब लग गई अब इसकी नीयत खराब हो गई, इस बंदे की। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देके कहा, हजरत या तो घोड़ा इसी वक्त आप लें नकद, या मैं और किसी के हाथ बेच देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के रुके, फरमाने लगे, तू तो इसे मेरे हाथ बेच चुका है, फिर ये क्या कह रहा है? उसने कहा, नहीं अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गलत कहता है, मेरे और तेरे दरमियान मामला हो चुका है। आप लोग इधर उधर से बीच में बोलने लगे। उस जो बद्दू आदमी था ना, उसने कहा, अच्छा फिर कोई गवाह लेकर आए कि मैंने आपके हाथ बेच दिए। मुसलमानों ने बहुत कहा उसको कि बदबख्त, तू अल्लाह के नबी के साथ ये कर रहा है, आपकी जुबान से तो हक ही निकलता है। लेकिन वो यही कह जा रहा था, नहीं लाओ गवाह लेकर आओ, गवाह लेकर आओ। इतने में हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला आ गए और जो बद्दू था उसके इस कॉल को सुन के फरमाने लगे, मैं गवाही देता हूं कि तूने बेच दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बेचा। आपने फरमाया, तू कैसे गवाही दे रहा? हजरत उसैमा ने फरमाया, आपकी तस्दीक और सच्चाई की बुनियाद पे ये शहादत दी है। हम जब आपके ऊपर ईमान ले आए हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से जो बताते हैं, जब उसके ऊपर ईमान ले आते हैं, तो फिर ये क्या चीज है? हम बगैर देखे, हमने तो नहीं देखा जिब्राइल अलैहि सलाम को आते हुए, हमने तो नहीं देखा वो क्या बात लेकर आए, लेकिन जब हम उसके ऊपर आंखें बंद करके ईमान ले आते हैं, तो फिर क्या इस पे नहीं लाएंगे? उस दिन आपने फरमाया था, आज से हजरत खुजैमा की गवाही दो गवाहों के बराबर है। नहीं? तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब, यानी नकद का मामला मैं आपको बताना चाह रही थी कि उसके ऊपर फिर कोई गवाह या लिखत पढ़त की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ताला हमें ये आयात सीखने की, समझने की, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे अंदर तकवा पैदा फरमा दे।